एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही विशाल समुद्र, एक सफेद वेल और जुनून की कहानियां जहन में तैरने लगती हैं, हर्मन मेलविल। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ मोबी डिक से कहीं ज्यादा गहरी और उतार चढ़ाव भरी है ना?
बिल्कुल, हर्मन मेलविल अमेरिकी साहित्य के एक कह सकते हैं बहुत ही जटिल और दिलचस्प किरदार हैं। उनकी जिंदगी वो किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं थी। 1819 में जन्मे मेलविल ने उस दौर में लिखना शुरू किया जब अमेरिका खुद अपनी पहचान बना रहा था, अपनी एक आवाज ढूंढ रहा था।
हाँ, और उनकी कहानियां सिर्फ समुद्री यात्राओं का ब्यौरा नहीं है, जैसा आपने कहा, वो तो मानवीय जुनून की गहराइयों, नैतिकता के कठिन सवालों और अमेरिकी सपने के सियाह पहलुओं को भी टटोलती हैं।
एकदम। और उनकी अपनी जिंदगी की कहानी भी तो देखिए, शुरुआती दौर में जबरदस्त शोहरत मिली, फिर एकदम गुमनामी का अंधेरा छा गया, और फिर मौत के कई दशकों बाद उन्हें फिर से महान लेखकों में गिना जाने लगा।
हाँ, ये सफर समझना वाकई दिलचस्प होगा। तो शुरुआत उनके जमाने से करते हैं, कैसा था वो अमेरिका जिसमें मेलविल लिख रहे थे?
मेलविल का दौर अमेरिकी इतिहास का एक बहुत बहुत अहम मोड़ था। सोचिए, 1819 में जब वो पैदा हुए, अमेरिका एक तथाकथित एरा ऑफ गुड फीलिंग्स, यानी अच्छी भावनाओं के दौर से गुजर रहा था, ऐसा कहा जाता था।
लेकिन ये शायद ऊपरी शांति थी।
हाँ बिल्कुल, सत्ता के नीचे गुलामी जैसे मुद्दों पर जबरदस्त तनाव था। मिसौरी समझौते पर जो बहस हुई वो इसका सबूत है। और ये वो समय भी था जब भाप के इंजन धीरे धीरे पुरानी लकड़ी की जहाजों की जगह ले रहे थे। देश पश्चिम की ओर फैल रहा था, एक तरह का बदलाव, संक्रमण का दौर था।
और ये अमेरिकी पुनर्जागरण का दौर भी तो था, है ना? एमर्सन और थॉरो जैसे विचारक, वो व्यक्तिवाद और प्रकृति की दिव्यता की बातें कर रहे थे। क्या मेलविल भी इसी धारा में थे?
देखिए, मेलविल भी एक विशिष्ट अमेरिकी साहित्य रचना चाहते थे, ये तो सच है। लेकिन उनका रास्ता एमर्सन और थॉरो के आशावाद से मतलब बिल्कुल अलग था। जहां वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट मानते थे कि व्यक्ति अपने अंदर झांक कर दिव्यता पा सकता है।
हाँ, वो प्रकृति में ईश्वर देखते थे।
सही, लेकिन मेलविल को इस पर शक था। वो हॉथोर्न और एडगर एलन पो जैसे लेखकों के ज्यादा करीब थे, जो इंसान के मन के अंधेरे कोनों, पाप की मौजूदगी और नैतिक दुविधाओं को खंगाल रहे थे। मेलविल का काम एक तरह से एमर्सन की आत्मनिर्भरता के विचार को चुनौती देता था।
अच्छा, कैसे?
मतलब वो ये दिखाते थे कि बिना परखे खुद पर भरोसा करना शायद ज्ञान नहीं बल्कि नरक का रास्ता भी दिखा सकता है। सिर्फ अपने अंदर झांकना काफी नहीं है।
यानी उस दौर की बड़ी घटना है, जैसे मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध, कैलिफोर्निया गोल्ड रश का लालच और गृह युद्ध की तरफ बढ़ता देश, ये सब उनके लेखन में झलकता होगा।
निश्चित रूप से ये घटनाएं उनके लेखन की पृष्ठभूमि बनाती हैं। मेलविल ने अमेरिका के मैनिफेस्ट डेस्टिनी, मतलब अपनी सीमाओं को हर कीमत पर बढ़ाते जाने की महत्वाकांक्षा, उसमें वही अहंकार और विनाशकारी जुनून देखा
जो
कैप्टन अहाब में दिखता है
सफेद वेल के पीछे।
बिल्कुल, वही जुनून। और वेलिंग उद्योग जिस पर मोबी डिक आधारित है, वो सिर्फ वेल पकड़ने का काम नहीं था, वो उस समय अमेरिका की वैश्विक पहुंच, प्रकृति के साथ उसके जटिल रिश्ते, टेक्नोलॉजी और हाँ, आर्थिक शोषण का प्रतीक भी बन गया था।
तो वो न्यूयॉर्क के साहित्यिक माहौल में सक्रिय तो थे, लेकिन उनकी बातें शायद लोगों को भारी लगने लगी।
हाँ, उनकी गहरी दार्शनिक बातें जल्दी आम पाठकों को उनसे दूर करने लगी। वो कुछ ज्यादा ही गहरे उतर रहे थे शायद।
चलिए अब उनके शुरुआती जीवन पर आते हैं। सुना है उनके परिवार का इतिहास भी काफी नाटकीय रहा है।
हाँ, काफी। 1 अगस्त 1819 को न्यूयॉर्क शहर में जन्मे हर्मन मेलविल के खानदान का ताल्लुक अमेरिकी क्रांति के नायकों से था। दादा बॉस्टन टी पार्टी के सदस्य थे और नाना सैराटोगा की लड़ाई के हीरो।
अरे वाह, लेकिन ये शायद गुजरे जमाने की बातें थी उनके लिए।
हाँ, बीती हुई शान थी। असलियत ये थी कि जब हर्मन सिर्फ 12 साल के थे, उनके पिता जो आयात का काम करते थे, भारी कर्ज और शायद मानसिक परेशानी की हालत में गुजर गए।
ओह, 12 साल की उम्र में पिता का जाना और परिवार का आर्थिक संकट, इसका यकीनन बहुत गहरा असर पड़ा होगा उन पर।
बिल्कुल, इस घटना ने परिवार को एकदम तोड़ दिया और उन्हें गरीबी में ढकेल दिया। भाग्य, अन्याय और जिंदगी की ये जो अनिश्चितता है, इन विषयों से मेलविल का जो जीवन भर का सरोकार रहा उसकी जड़ें शायद इसी अनुभव में है।
और पढ़ाई भी छूट गई उनकी?
हाँ, आर्थिक तंगी के चलते उनकी औपचारिक पढ़ाई अधूरी रह गई। अल्बानी अकेडमी में पढ़े जरूर, लेकिन फिर जैसे बैंक क्लर्क, खेत मजदूर, स्कूल टीचर, इस तरह के काम करने पड़े।
तो फिर ये समुद्री यात्राओं का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? क्या यही उनकी इस असली शिक्षा बनी? जमीन पर शायद उन्हें वो नहीं मिल रहा था जो वो खोज रहे थे।
हाँ, आप कह सकते हैं शायद जमीनी दुनिया की हदों से ऊबकर या शायद मजबूरी में उन्होंने समुद्र की विशाल अनिश्चित दुनिया में अपनी जगह खोजी। 1839 में 20 साल की उम्र में वो लिवरपूल जाने वाले एक जहाज पर कैबिन बॉय बने। ये समुद्री दुनिया से उनका पहला सामना था।
लेकिन उनकी जिंदगी बदलने वाली यात्रा तो वो अकुशनेट वाली थी ना?
हाँ बिल्कुल। जनवरी 1841 में वो न्यू बेडफोर्ड से वेल पकड़ने वाले जहाज अकुशनेट पर सवार हुए।
अकुशनेट, इसी का जिक्र मूवी डिग में आता है ना, और वो इसे अपनी हार्वर्ड और येल कहते थे।
हाँ हाँ वही। 18 महीने तक उन्होंने प्रशांत महासागर में एक व्हेलमैन की कठोर, जानलेवा और अस्तित्व से जूझती जिंदगी जी। ये अनुभव उनके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से बढ़कर था, सच में, उनकी हार्वर्ड और येल।
और फिर वो जहाज से भाग भी गए थे मार्केसास द्वीप समूह में।
हाँ, 1842 में वो मार्केसास द्वीप समूह में जहाज से भाग गए और कई हफ्ते वहां के टाइपी कबीले के बीच रहे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे नरभक्षी हैं।
क्या बात है, जहाज से भागना, नरभक्षियों के बीच रहना, ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। इसके बाद भी रुके नहीं वो?
नहीं नहीं, उनके कारनामे जारी रहे। एक ऑस्ट्रेलियन व्हेल जहाज से भागे, ताहिती में किसी विद्रोह में शामिल हुए, कहीं खेत मजदूरी की, और आखिरकार अमेरिकी नौसेना के जहाज USS यूनाइटेड स्टेट्स में भर्ती हो गए।
बाप रे, कितना कुछ जी लिया उन्होंने इतने कम समय में।
बिल्कुल। अक्टूबर 1844 में जब वो बोस्टन में सेवा मुक्त हुए तो उनका दिमाग उन असाधारण अनुभवों से लबालब भरा था, और यही अनुभव उनके लिखने की, कह सकते हैं, कच्ची सामग्री बनने वाले थे।
और घर लौटते ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उनकी पहली किताब टाइपी तो बहुत मशहूर हुई थी, मैंने पढ़ा है।
हाँ, घर लौटकर दोस्तों और परिवार के कहने पर उन्होंने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। पहली किताब टाइपी 1846, जो मार्केसास में बिताए उनके वक्त का एक तरह से काल्पनिक ब्यौरा थी, वो रातों रात हिट हो गई।
क्यों, क्या था उसमें ऐसा?
लोग प्रशांत के दूर दराज द्वीपों की एक्जॉटिक कहानियों के दीवाने थे, और मेलविल मशहूर हो गए वो आदमी जो नरभक्षियों के बीच रहा था।
वो आदमी जो नरभक्षियों के बीच रहा था, क्या लेबल है। इसके बाद ओमू भी आई, वो भी चली।
हाँ, ओमू 1847 ने भी उनकी शोहरत बढ़ाई। 1847 में उन्होंने एलिजाबेथ लिजी शॉ से शादी भी कर ली। जिंदगी पटरी पर आती दिख रही थी, लेकिन
मेलविल शायद इस तरह की चीजों से ऊब गए थे, वो कुछ और करना चाहते थे।
एकदम, वो जल्द ही इस तरह की हल्की फुल्की साहसिक कहानियों से ऊब गए। वो ज्यादा गहरे, ज्यादा दार्शनिक विषयों पर लिखना चाहते थे,
और यहीं से शायद उनके करियर का मुश्किल दौर शुरू हुआ। उनकी किताब मार्डी के बारे में सुना है कि वो किसी को समझ नहीं आई थी।
सही कहा, मार्डी 1849 उनका पहला बड़ा कलात्मक प्रयोग था, एक बहुत बड़ी रूपक भरी कहानी जिसने पाठकों और आलोचकों दोनों को उलझा दिया। ये साफ इशारा था कि मेलविल अब व्यावसायिक सफलता की परवाह किए बिना अपनी कलात्मक महत्वाकांक्षाओं के पीछे जाने वाले हैं।
और इसका नतीजा आर्थिक रूप से बुरा हुआ होगा।
हाँ, आर्थिक रूप से ये कदम विनाशकारी साबित हुआ। मार्डी की नाकामी के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए रेडबर्न और व्हाइट जैकेट जैसी थोड़ी पारंपरिक किताबें लिखी, शायद पैसे के लिए, लेकिन उनका मन अब कहीं और था।
फिर 1850 में वो पिट्सफील्ड के उस फार्म एरोहेड भी चले गए, जहां उनकी मुलाकात अपने पड़ोसी नथैनियल हॉथॉर्न से हुई।
सुना है इस मुलाकात का मोबी डिक पर बहुत गहरा असर पड़ा।
बहुत गहरा। हॉथॉर्न, जो खुद अमेरिकी मानस की अंधेरी गहराइयों को खंगाल रहे थे, उनके साथ मेलविल की बौद्धिक और भावनात्मक दोस्ती बहुत गहरी थी। मेलविल ने मोबी डिक हॉथॉर्न को ही समर्पित किए।
अच्छा, हाँ, और इसी दोस्ती ने, इसी बौद्धिक संगति ने मेलविल को वेल पकड़ने पर लिखी जा रही अपनी किताब को एक ज्यादा बड़े, ज्यादा महत्वाकांक्षी कैनवस पर ले जाने के लिए प्रेरित किया।
और नतीजा था मोबी डिक 1851, आज जिसे हम क्लासिक मांगते हैं, एक मास्टरपीस, उस वक्त उसे कैसी प्रतिक्रिया मिली थी, ये जानना थोड़ा अजीब लगता है।
हैरानी की बात है, लेकिन मोबी डिक को उस वक्त लगभग पूरी तरह नकार दिया गया था। व्यावसायिक रूप से तो वो फ्लॉप रही ही, आलोचकों ने भी उसका मजाक उड़ाया।
मजाक उड़ाया? क्यों?
लोगों को उसकी कथित ईश्वर निंदा, उसका अजीबोगरीब ढांचा, मतलब कभी कहानी, कभी वेल पर लेक्चर, कभी नाटक, और उसका जो गहरा आध्यात्मिक अंधेरा था
जी,
वो पसंद नहीं आया। जिस दर्शक वर्ग ने टाइपी को सिर आंखों पर बिठाया था, वही मोबी डिक से बिदक गया।
ये मेलविल के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा।
जबरदस्त झटका था, ऐसा झटका जिससे उनका करियर फिर कभी पूरी तरह उबर नहीं पाया।
यानी टाइपी की सफलता के बाद मोबी डिक की असफलता, ये समझना मुश्किल है थोड़ा। क्या पाठक उसे समझ नहीं पाए या जानबूझकर नापसंद कर रहे थे?
शायद दोनों बातें थीं। मेलविल उस वक्त के साहित्यिक स्वाद से बहुत बहुत आगे निकल गए थे। वो सिर्फ कहानी नहीं कह रहे थे, वो अस्तित्व के बड़े सवाल उठा रहे थे। भाषा और शैली के साथ ऐसे प्रयोग कर रहे थे जो उस दौर के लिए बिल्कुल नए थे। पाठकों को शायद ये सब बहुत भारी, बहुत अजीब लगा।
और फिर उनका अगला उपन्यास पियरे, वो तो और भी बुरा रहा।
हाँ, पियरे और द एम्बिग्विटीज 1852 तो पूरी तरह से एक आपदा साबित हुआ।
उसमें ऐसा क्या था?
पियरे एक बेहद अंधेरा, मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल और नैतिक रूप से अस्पष्ट उपन्यास था। इसमें कुछ ऐसे विषयों के संकेत थे जैसे अनाचार, जो उस वक्त के समाज के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य थे, और ये उस वक्त के सामाजिक पाखंड पर तीखा हमला था। इसे पढ़कर तो लोगों ने मेलविल को लगभग पागल ही समझ लिया।
बाप रे।
हाँ, इसके बाद एक व्यावसायिक उपन्यासकार के तौर पर उनका करियर लगभग खत्म हो गया।
ये तो बहुत दुखद है। फिर उन्होंने क्या किया? लिखना छोड़ दिया?
नहीं, लिखना नहीं छोड़ा। अगले कुछ सालों में उन्होंने कुछ बेहतरीन कहानियां लिखी जो पत्रिकाओं में छपी, जैसे बार्टलेबी द स्क्रिवनर और बेनिटो सेरेनो। ये आज क्लासिक मानी जाती हैं, लेकिन तब इन्हें भी ज्यादा सराहना नहीं मिली।
और फिर वो आग वाली घटना भी हुई थी ना?
हाँ, 1856 में उनके प्रकाशक के गोदाम में आग लग गई और उनकी किताबों की प्रिंटिंग प्लेटें जल गईं। ये एक तरह से उनके उपन्यासकार करियर का, कह लीजिए, प्रतीकात्मक अंत था।
आर्थिक तंगी, मनोवैज्ञानिक दबाव, ये सब झेलना पड़ा होगा उन्हें, उनके परिवार को।
बिल्कुल, आर्थिक तंगी और शायद मानसिक उथल पुथल से जूझते हुए उन्होंने लेक्चर देने शुरू किए, यूरोप और पवित्र भूमि की यात्रा की, शायद शांति की तलाश में। आखिरकार 1866 में उन्होंने न्यूयॉर्क कस्टम हाउस में एक डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर की नौकरी कर ली।
कस्टम इंस्पेक्टर, मोबी डिक का लेखक?
हाँ, एक शांत गुमनाम सी नौकरी जो उन्होंने 19 साल तक की। सोचिए जरा,
19 साल गुमनामी में,
और इस दौरान भी वो लिखते रहे।
हाँ, वो सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब हो गए थे, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। अपनी रचनात्मक ऊर्जा उन्होंने कविता की ओर मोड़ दी। गृह युद्ध पर बैटल पीसेस लिखी और एक लंबी, बहुत जटिल कथा कविता क्लैरेल 1876 भी लिखी, जिसे शायद ही किसी ने पढ़ा हो। इसी दौर में व्यक्तिगत त्रासदियां भी हुई, जैसे उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली।
ओह, ये तो बहुत दुखद है।
हाँ, जीवन बहुत कठिन रहा उनका।
और अपने आखिरी सालों में उन्होंने बिली बर्ड लिखी, वो तो उनकी मौत के बाद मिली थी ना?
हाँ, अपने अंतिम वर्षों में वो चुपचाप एक छोटे उपन्यास बिली बर्ड सेलर पर काम करते रहे। ये उनकी मृत्यु के समय अधूरी थी। 28 सितंबर 1891 को हरमन मेलविल का न्यूयॉर्क में अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, लगभग पूरी गुमनामी में।
और वो अखबार वाली बात?
हाँ, द न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छोटी सी श्रद्धांजलि छपी, उसमें उनकी महान कृति का नाम भी गलत लिखा था, मोबी डिक, MOBII। वाह, अपनी सबसे बड़ी रचना का नाम भी सही नहीं। इससे पता चलता है कि वो कितने गुमनाम हो गए थे। चलिए, अब उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं और उनके मूल विचारों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। टाइपी से शुरू करें, वो सिर्फ रोमांचक कहानी नहीं थी जैसा आपने कहा।
नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइपी सिर्फ रोमांच नहीं था। हाँ, वो एक दिलचस्प यात्रा वृतांत था, लेकिन साथ ही वो पश्चिमी उपनिवेशवाद की तीखी आलोचना भी थी। उसमें मेलविल ने यह सवाल उठाया कि आखिर सभ्य कौन है और असभ्य कौन। कई मायनों में उन्होंने पॉलिनेशियाई समाज को उस वक्त की तथाकथित ईसाई सभ्यता से बेहतर दिखाया।
और फिर मोबी डिक, ये सिर्फ व्हेल पकड़ने की कहानी क्यों नहीं है? इसमें क्या खास है जो इसे इतना महान बनाता?
मोबी डिक एक महाकाव्य है, एक यूनिवर्स है अपने आप में। ये कैप्टन अहाब के जुनून और पागलपन की कहानी तो है ही, उस सफेद व्हेल के पीछे उसका अंधा जुनून, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बुराई की प्रकृति, ज्ञान की सीमाओं, ईश्वर की मर्जी या उसकी गैर मौजूदगी और अमेरिकी महत्वाकांक्षा के अहंकार पर एक गहरा दार्शनिक चिंतन भी है।
और उसकी भाषा और शैली, वो भी तो अनोखी है।
हाँ बिल्कुल, मेलविल ने इसमें शेक्सपियर की त्रासदियों जैसी भाषा, बाइबल के रूपक और भेल विज्ञान के विस्तृत ब्यौरों को एक साथ गूंथ दिया है। उन्होंने पारंपरिक उपन्यास के ढांचे को ही तोड़ दिया, मतलब आप कहानी पढ़ रहे हैं और अचानक भेल के शरीर विज्ञान पर एक पूरा अध्याय आ जाता है। ये एक ऐसी किताब है जिसे आप जितनी बार पढ़ें उतने नए अर्थ मिलते हैं।
पियरे के बारे में आपने बताया कि वो एक आपदा थी, क्या उसमें कोई साहित्यिक गुण नहीं था या बस वो समय से आगे थी?
साहित्यिक गुण तो थे, यकीनन थे, लेकिन हाँ वो अपने समय से बहुत आगे थी। पियर एक मनोवैज्ञानिक गौथिक उपन्यास है जो सामाजिक पाखंड और सतही नैतिकता पर कड़ा प्रहार करता है। ये दिखाता है कि कैसे आदर्शों के पीछे अंधा होकर भागना विनाश और यहाँ तक कि पागलपन तक ले जा सकता है। ये इतना कच्चा, इतना बेचैन करने वाला था कि उस दौर के पाठक इसे झेल नहीं पाए।
और वो पत्रिका कहानियां बाटली भी, द स्क्रिवनर, उसका वो मशहूर जुमला मैं नहीं करना पसंद करूंगा, आई वुड प्रिफर नॉट टू, आज भी गूंजता है, वो क्या दर्शाता है?
हाँ, बाटले भी आधुनिक अलगाव, पूंजीवाद की निरर्थकता और व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर एक अद्भुत रहस्यमयी कहानी है। वॉल स्ट्रीट का एक क्लर्क जो शांति से बिना किसी गुस्से के हर काम को करने से मना कर देता है, बस ये कहकर मैं नहीं करना पसंद करूंगा, कोई वजह नहीं बताता। ये निष्क्रिय प्रतिरोध का या शायद गहरे अस्तित्वगत खालीपन का प्रतीक बन गया है। ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस किरदार का मतलब क्या है।
और बेनिटो सेरेनो, उसमें क्या खास था?
बेनिटो सेरेनो रहस्य और भ्रम रचने में मेलविल की महारत का बेहतरीन नमूना है। एक गुलाम जहाज की कहानी जिस पर गुलामों ने चुपके से कब्जा कर लिया है, लेकिन जहाज पर आया एक भोला अमेरिकन कैप्टन इस सच्चाई को भांप नहीं पाता, क्योंकि वो वही देखना चाहता है, गोरे श्रेष्ठ हैं, काले गुलाम।
अच्छा।
हाँ, ये कहानी दिखावे के पीछे छिपी सच्चाई, नस्लीय पूर्वाग्रहों के अंधेपन और सत्ता के उलटफेर को बड़ी कुशलता से दिखाती है। बहुत ही तनावपूर्ण कहानी है।
और अंत में बिली बर्ड सेलर, जो उनकी मृत्यु के बाद मिली, इसे उनका अंतिम बयान माना जाता।
हाँ, कई आलोचक इसे ऐसा मानते हैं। बिली बर्ड एक बेहद खूबसूरत और दुखद कहानी है। एक नेक तेल, लगभग फरिश्ते जैसा निर्दोष नाविक बिली, जिसकी कहानी है, उसे अपने एक झूठे आरोप लगाने वाले अफसर पर हमला करने के जुर्म में फांसी दे दी जाती है।
लेकिन वो निर्दोष था।
हाँ, उसका इरादा बुरा नहीं था, वो उकसावे में आ गया था, लेकिन नौसेना का कानून कठोर था। ये कहानी प्राकृतिक न्याय, मतलब जो दिल कहता है सही है, और राज्य के कठोर अमानवीय कानूनों के बीच के दर्दनाक टकराव को दिखाती है। निर्दोषता, बुराई और सत्ता की जटिलताओं पर ये मेलविल का एक शक्तिशाली आखिरी चिंतन है।
तो अगर हम साहित्य में उनके योगदान को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? भाषा, शैली, विचार, किस चीज ने उन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाया, खासकर अमेरिकी साहित्य के लिए?
देखिए, मेलविल का सबसे बड़ा योगदान अमेरिकी उपन्यास की संभावनाओं को अभूतपूर्व रूप से विस्तार देना था, भाषा के स्तर पर, शैली के स्तर पर और विचारों के स्तर पर। उनकी भाषा देखिए, उसमें बाइबल जैसी भव्यता है, शेक्सपियर जैसी नाटकीयता है, मिल्टन जैसा अंधेरा है, और साथ ही नाविकों की आम बोलचाल और वेल पकड़ने के तकनीकी शब्द भी हैं। ये मिश्रण ही अद्भुत है।
हाँ, वो भाषा ही अपने आप में एक अनुभव है।
बिल्कुल, इस अनूठी भाषा ने ही उन्हें एक समुद्री यात्रा को ब्रह्मांडीय नाटक बनाने की क्षमता दी।
और शैली के स्तर पर भी वो प्रयोगधर्मी थे।
बहुत ज्यादा। उन्होंने 19वीं सदी के उपन्यास के बंधे बंधाए नियमों को तोड़ा। जैसा मैंने कहा, मोबी डिक में कहानी के बीच में भेल पर पूरे पूरे अध्याय हैं, नाटकीय एकालाप है, दार्शनिक चिंतन है, ये सब उस वक्त बहुत नया था। शैली के साथ ये प्रयोग उन्हें सीधे सीधे 20वीं सदी के आधुनिकतावाद का पुरखा बनाते हैं।
और विचारों के स्तर पर उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? क्या वो उस आशावादी अमेरिकी मिजाज के खिलाफ लिख रहे थे?
हाँ, काफी हद तक। विचारों के स्तर पर एक ऐसे दौर में जब अमेरिकी संस्कृति सतही आशावाद में डूबी हुई थी, मेलविल ने हिम्मत दिखाई अस्तित्व के सबसे अंधेरे सवालों से जूझने की। शून्य का आकर्षण, जुनून का पागलपन, अच्छे और बुरे के बीच की धुंधली रेखा, उन्होंने आसान जवाब नहीं दिए।
और उन्होंने जहाज को एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया।
हाँ, जहाज उनके लिए इंसानियत और समाज का एक छोटा रूप, माइक्रोकॉस्म बन गया। जहाज पर मौजूद अलग अलग तरह के लोग, उनके आपसी रिश्ते, नियम, संघर्ष, इनके जरिए उन्होंने लोकतंत्र, सत्ता, नस्ल और सामाजिक व्यवस्था पर गहरे सवाल उठाए।
उनके किरदार अहाब, बार्टलेबी, बिली बर्ड, ये सिर्फ कहानी के पात्र नहीं लगते बल्कि इंसानी हालत के प्रतीक बन गए हैं ना, जैसे आर्केटाइप्स।
सही कहा, वे महज सामाजिक टाइप नहीं है बल्कि वे मानव अस्तित्व की उन बुनियादी दुविधाओं से जूझते हैं जो किसी एक समय या जगह तक सीमित नहीं है। अहाब का जुनून, बार्टलेबी का अलगाव, बिली की निर्दोषता, ये सब इंसानी अनुभव के स्थायी हिस्से हैं। आसान जवाब देने से इनकार करके और इंसानी रूह की जटिलताओं पर जोर देकर मेलविल ने अमेरिकी साहित्य में मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक गहराई का एक ऐसा स्तर छुआ जो उनसे पहले नहीं देखा गया था।
अब बात करते हैं उनकी विरासत की। ये जानना वाकई हैरान करता है कि जीते जी उन्हें लगभग भुला दिया गया और मौत के बाद वो इतने महान माने गए। ये बदलाव कैसे आया? ये रिवाइवल कैसे हुआ?
ये साहित्यिक इतिहास की सबसे नाटकीय वापसी कहानियों में से एक है। जैसा हमने कहा, जीते जी पहले उन्हें साउथ सी एडवेंचर राइटर के तौर पर सराहा गया, फिर एक ऐसे सनकी लेखक के तौर पर खारिज कर दिया गया जिसने अपनी प्रतिभा बेकार के, समझ से बाहर के दार्शनिक विचारों पर बर्बाद कर दी। 1891 में जब उनकी मौत हुई, साहित्यिक दुनिया उन्हें लगभग भूल चुकी थी।
तो फिर ये मेलविल रिवाइवल कब और कैसे हुआ? किसने उन्हें दोबारा खोजा?
बदलाव आया पहले विश्व युद्ध के बाद। युद्ध की विभीषिका ने दुनिया का मोह भंग कर दिया था। वो पुराना विक्टोरियन आशावाद टूट चुका था। ऐसे माहौल में पाठकों और आलोचकों की एक नई पीढ़ी को मेलविल के अंधेरे नजरिए में, उनकी जटिलता में अपने समय की सच्चाई दिखाई दी।
अच्छा, तो माहौल बदल गया था।
हाँ, और फिर 1920 के दशक में रेमंड वीवर जैसे विद्वानों ने, जिन्होंने पहली जीवनी लिखी और अटारी में पड़ी बिली बर्ड की पांडुलिपि खोजी और उसे प्रकाशित करवाया, उन्होंने मेलविल रिवाइवल का नेतृत्व किया। और देखते ही देखते मेलविल अमेरिकी साहित्य के शिखर पर पहुंच गए जहां वो आज भी हैं।
और 20वीं सदी के लेखकों पर भी उनका गहरा असर पड़ा।
हाँ, बहुत गहरा। इस पुनर्खोज ने उन्हें 20वीं सदी के आधुनिकतावाद का एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बना दिया। विलियम फॉकनर, डीएच लॉरेंस, हार्ट क्रेन, अल्बर्ट कामू जैसे बड़े लेखकों ने उन्हें सराहा, उनसे प्रेरणा ली। कामू ने तो अहाब के विद्रोह में एक निरर्थक, एब्सर्ड ब्रह्मांड के खिलाफ अस्तित्ववादी संघर्ष का प्रतीक देखा।
और आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। क्या नए नजरिए से भी उन्हें पढ़ा जा रहा है, जैसे आजकल पोस्ट कॉलोनियल या इको क्रिटिसिज्म की बात होती है?
इकोलॉजिकल, पारिस्थितिक, क्वेयर थियरी जैसे नए आलोचनात्मक नजरियों से उनके काम को परखा जा रहा है। ये दिखाता है कि उनकी कला कितनी समृद्ध और बहुस्तरीय है।
उदाहरण के लिए,
मिसाल के तौर पर, पोस्ट कॉलोनियल नजरिया देखता है कि टाइपी या बेनिटो सेरिनो में पश्चिमी और गैर पश्चिमी संस्कृतियों का टकराव कैसे दिखाया गया है, या नस्ल और सत्ता का खेल कैसे चलता है। इकोलॉजिकल नजरिया मोबी डिक में प्रकृति और इंसान के हिंसक रिश्ते, वेलिंग उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव पर ध्यान देता है। उनकी प्रासंगिकता इसलिए बनी हुई है क्योंकि उन्होंने इंसान के मन और समाज के उन मुश्किल, बेचैन करने वाले सवालों से सीधे टकराने की हिम्मत दिखाई जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं।
चलिए उनके कुछ मशहूर कथनों को याद करते हैं। शुरुआत तो जाहिर है मोबी डिक की पहली पंक्ति से ही करनी होगी, मुझे इश्माइल कहो।
हाँ, साहित्य की सबसे जानी मानी शुरुआतों में से एक। ये तुरंत कहानी सुनाने वाले को एक भटके हुए बाहरी व्यक्ति के तौर पर स्थापित कर देती है जो हमें एक असाधारण यात्रा पर ले जाने वाला है। एक तरह का खुला निमंत्रण भी है ये।
और कैप्टन अहाब का वो भयानक संकल्प जब वो वेल को देखता है, अंत तक मैं तुझसे जूझता हूँ, नरक के हृदय से मैं तुझ पर वार करता हूँ, घृणा के लिए मैं तुझ पर अपनी आखिरी सांस थूकता हूँ। टू द लास्ट आई ग्रैपल विद दी, From hell heart I stabbed thee, for hate's sake I spit my last breath at thee. रोंगटे खड़े कर देता है।
हाँ, ये सिर्फ एक जानवर के खिलाफ गुस्सा नहीं है, ये शायद एक उदासीन या शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड के खिलाफ, या शायद अपने अंदर की ही किसी बुराई के खिलाफ इंसान के निरर्थक लेकिन अदम्य विद्रोह की चीख है। अहाब का ये जुनून एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है, किसी एक लक्ष्य के पीछे अंधे होकर भागने के खतरे का प्रतीक।
और दूसरी तरफ बार्टलेबी का वो शांत लेकिन दृढ़ इनकार, मैं नहीं करना पसंद करूंगा।
आई वुड प्रेफर नॉट टू।
कितना शक्तिशाली है ये सादा सा वाक्य।
हाँ, ये निष्क्रिय प्रतिरोध का, या शायद आधुनिक दुनिया की मांगों से, काम की निरर्थकता से पूरी तरह कट जाने का एक गहरा बयान है। ये आज भी हमें बेचैन करता है, इसकी व्याख्याएं आज भी होती रहती हैं।
मेलविल ने हॉथोर्न को मोबीडिक लिखने के बाद लिखा था, मैंने एक दुष्ट किताब लिखी है और मैमने की तरह बेदाग महसूस करता हूँ।
I have written a wicked book and feel spotless as the lamb.
इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो मजाक कर रहे थे?
शायद थोड़ा मजाक, लेकिन इसमें गहरी बात है। ये दिखाता है कि मेलविल को पता था कि उनकी किताब पारंपरिक नैतिकता और साहित्यिक नियमों को चुनौती दे रही है। वो जानते थे कि ये दुष्ट या विध्वंसक लग सकती है, लेकिन उन्हें लगता था कि ऐसा करके ही वो एक ज्यादा गहरे, ज्यादा सच्चे सत्य तक पहुंच पाए हैं, और इसीलिए वो कलात्मक रूप से बेदाग महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी कला के प्रति ईमानदारी बढ़ती थी।
अहाब कर का और कथन है जो उसके पागलपन को दिखाता है। मेरे सभी साधन समझदार हैं, मेरा उद्देश्य और मेरा लक्ष्य पागल है।
ऑल माई मीन्स आर सेन, माई मोटिव एंड माई ऑब्जेक्ट मैड।
ये कमाल का कथन है। ये दिखाता है कि अहाब का पागलपन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह तर्क खो बैठा है। नहीं, अपनी योजना को पूरा करने के लिए वो बहुत सदे हुए तर्कसंगत तरीके अपनाता है। उसका जहाज चलाना, वेलिंग की तकनीक, सब ठीक है। पागलपन उसके इरादे में है, उसके उस एक जुनून में है जिसने उसे अंधा कर दिया है। ये जुनून की प्रकृति पर एक शानदार टिप्पणी है। और अंत में हार्पूनर क्यूकवेग का वो कथन, अज्ञान भय का जनक है। ये मेलविल के दर्शन का कौन सा पहलू दिखाता है?
ये दिखाता है कि मेलविल पूर्वाग्रहों और अनजान चीजों के डर को कितना गहराई से समझते थे। मोबीडिक में अलग अलग संस्कृतियों और नस्लों के नाविक एक साथ काम करते हैं, और अक्सर क्यूक्वेक, जिसे बाहरी दुनिया असभ्य मानती है, कहानी में सबसे ज्यादा समझदार, वफादार और मानवीय नजर आता है। ये कथन दिखाता है कि डर अक्सर समझ की कमी से, अज्ञान से पैदा होता है। दूसरों को जानने से डर कम होता है।
कुछ और रोचक बातें भी हैं मेलविल के बारे में, जैसे उनके नाना और दादा का क्रांतिकारी इतिहास, परिवार का आर्थिक पतन, हॉथोर्न से दोस्ती का महत्व, ये सब हमने छुआ। लेकिन 19 साल तक कस्टम इंस्पेक्टर की नौकरी करना, ये आज भी हैरान करता।
हाँ, और ये भी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी मौत पर श्रद्धांजलि में मोबीडिक की स्पेलिंग गलत लिखी, या ये कि उन्हें जीते जी कोई बड़ा साहित्यिक पुरस्कार नहीं मिला, सारी पहचान मरणोपरांत मिली। ये सब उनकी कहानी को और भी नाटकीय बनाता है।
और बिली बट का उनकी मौत के इतने साल बाद 1924 में छपना, ये भी एक कहानी अपने आप में। एक और दिलचस्प बात शायद यह है कि उनकी किताब व्हाइट जैकेट में कोड़े मारने की प्रथा की आलोचना ने शायद अमेरिकी नौसेना में सुधार लाने में भूमिका निभाई थी।
हाँ, ऐसा माना जाता है। व्हाइट जैकेट में उन्होंने नौसेना में कोड़े मारने की क्रूर प्रथा का बहुत सजीव और भयावह वर्णन किया था, और इस किताब के प्रकाशन के कुछ समय बाद ही इस सजा पर रोक लगा दी गई। तो ये दिखाता है कि साहित्य कभी कभी सीधे सामाजिक बदलाव भी ला सकता है, भले ही लेखक खुद गुमनामी में जी रहा हो।
तो मेलविल की विरासत वाकई जटिल और स्थायी है। एक लेखक जो अपने समय से इतना आगे था कि उसे समझा ही नहीं गया।
बिल्कुल, मेलविल की रचनाएं हमें लगातार याद दिलाती हैं कि सतह के नीचे हमेशा गहरा अर्थ छिपा होता है, चाहे वो समुद्र की गहराई हो, इंसान के मन की जटिल गुत्थियां हो, या समाज का ढांचा हो। उनकी कहानियां हमें चुनौती देती हैं कि हम आसान जवाबों से संतुष्ट ना हो, बल्कि अंधेरे और मुश्किल सवालों से जूझने का साहस दिखाएं।
ये सोचने वाली बात है, क्या आज की इस तेज रफ्तार, सूचनाओं से भरी दुनिया में, जहां हर चीज तुरंत चाहिए, हम सतह पर ही जीने के इतने आदी हो गए हैं कि उन गहरी सच्चाइयों को खंगालने का वक्त या साहस ही नहीं बचा जिनसे मेलविल अपनी पूरी जिंदगी जूझते रहे?
ये सवाल मेलविल हमें आज भी पूछने पर मजबूर करते हैं, और शायद यही उनकी स्थायी प्रासंगिकता है कि वो हमें गहराई में देखने के लिए उकसाते रहते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।